Now we are left with only one chapter, that is chapter 9, the fall of the Mughal Empire. Chapter 9 is the last chapter of class 7 NCERT book. And yahan pe hum dekhenge ki jaise hi Aurangzeb dies in 1707, there was a war of succession among his sons, and Aurangzeb was left with 3 surviving sons, and unme bahut ladai hui throne ko leke, and the one who got victorious took the title of Bahadur Shah, and he started ruling from 1707, and he ruled for a short period of 4 years, but his rule was full of troubles. Aur Bahadur Shah ne try kiya ki wo apna jo empire hai wo extend kare aur Rajputs pe thoda control kare, lekin Rajputs were always ready to rebel and they did the same thing. बहादुर शाह ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाया, और सिख्स जो हैं उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया था उस टाइम पे, और मराठास बहादुर शाह के आते जाते इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें मुगल्स के लिए, लेकिन वो खुद में ही आपस में ही लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, एंड वॉट दे वर डूइंग वॉज दे यूज टू डू द सेम थिंग्स ऑफ रेडिंग हियर एंड देयर इन द मुगल टेरिटरी. और मराठा जो राजा है, राजा शाहू, उसने मनसब रैंक भी एक्सेप्ट कर लिया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में. जब बहादुर शाह की डेथ हो जाती है 1712 में, वापस से एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है बहादुर शाह के बेटों के बीच में, एंड बहुत सारे वीक रूलर्स थे उस टाइम पे जो जिन्होंने छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए रूल किया 1712 के बाद. एंड उसके बाद मोहम्मद शाह जो है, he tried to pull the empire together, लेकिन empire जो है already it was broken up, and जो सिख्स हैं उन्होंने by now revolts करने शुरू कर दिए थे, and these revolts were led by बंदा, and वो इतना ज़्यादा determined था कि उसको सिख रूल, independent सिख स्टेट बनानी थी पंजाब में. he failed to do so, but he succeeded in harassing the Mughals, और मराठास भी इस टाइम पे they were organizing, reorganizing themselves actually under a new system of government, that of the Brahmin ministers, the Peshwas. और उनमें भी एक नया system of government आया था Peshwas के अंडर. अब Marathas अपने आप को reorganize करने की कोशिश कर रहे थे, and they were actually trying to extend their rule towards North India. और जो Afghans थे जो settle हुए थे रोहिलखंड में, वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे मुगल्स के अगेंस्ट, मुगल गवर्नमेंट के अगेंस्ट. और उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट ये था कि ये जो असर्शन है इंडिपेंडेंस का जो छोटे छोटे लोग कर रहे थे, ये बाकी पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में भी फैल चुका था. जैसे कि फॉर एग्जांपल देर वर 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स जिन्होंने अपने 3 अलग अलग किंगडम बनाए, दैट वॉज द किंगडम ऑफ हैदराबाद, किंगडम ऑफ बंगाल एंड किंगडम इन अवध. एंड ये जो है इतना नहीं, बट बहुत सारे ट्रबल्स हो रहे थे मुगल किंग्स के बीच में, और मुगल रूल के लिए बहुत सारे ट्रबल्स थे, और उसके साथ साथ मुगल्स को नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे अटैक्स फेस करने पड़े, एंड इस वजह से जो है मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बहुत वीक हो रही थी. और उसी टाइम पे नादिर शाह जो है ईरान का, उसने अटैक किया, और ही हैड ऑलरेडी टेकन काबुल, एंड मुगल से उसने काबुल पहले ही ले लिया था. 1739 में फर्स्ट इन्वेजन हुआ नादिर शाह का, एंड ही स्टार्टेड कमिंग इनटू द प्लेन्स ऑफ इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट से ही एंटर्ड इंडिया, एंड ही इन्वेडेड द सिटी ऑफ दिल्ली. हम नादिर शाह की बात कर रहे हैं जो कि ईरान से आया था, एंड मुगल्स ने सबमिट कर दिया कि उस ये सोच के कि वो मनी और वेल्थ कलेक्ट करेगा और नादिर शाह वापस चला जाएगा. और नादिर शाह की आर्मी ने बुरी तरीके से पूरी सिटी ऑफ दिल्ली को बहुत गंदे तरीके से लूटा, एंड ऑब्वियसली दे हैड लेफ्ट आफ्टर डेजर्टिंग द सिटी. एंड उस टाइम पे जो शाहजहाँ का पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर डायमंड था, वो नादिर शाह ले गया अपने साथ ईरान. उसके बाद नादिर शाह तो चला गया इन्वेड करके और सब लूट लाट के, एक अफगान का एडवेंचर था उसने एकदम प्रॉपरली नादिर शाह के फुटस्टेप्स को फॉलो किया और वो भी इंडिया आ गया भैया इन्वेड करने के चक्कर में, और उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसने कॉन्कर किया पंजाब को और वो टेरिटरी अपनी टेरिटरी में ऐड कर ली। इसके पास ऑलरेडी अफगानिस्तान था, उसने पंजाब को भी कॉन्कर कर लिया। और मीनवाइल हम देखते हैं कि जो मराठास हैं अंडर द पेशवास, दे वर गेनिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे वर एक्वायरिंग टेरिटरी पहले वेस्टर्न इंडिया में। और मराठास ने उस टाइम पे कभी डायरेक्ट अटैक नहीं किया मुगल एम्परर पे, लेकिन वो अपनी एक अलग से रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, बिकॉज मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे वो अब वीक हो चुके थे। लेकिन मराठास का थोड़ा उस टाइम पे फाइट हो गई अहमद शाह अब्दाली के साथ, जो कि अफगान था और वो भी इंडिया में कॉन्कर करने के ही मकसद से आया था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में, और मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। एंड इस वजह से मराठास को नॉर्थ इंडिया तो छोड़ना पड़ा, उनको वापस अपनी जगह पर जाना पड़ा, और एम्पायर जो था वो सिर्फ दिल्ली के आसपास बच गया था। और मुगल एम्परर्स जो हैं उन्होंने रूल किया है 1857 तक, और जो रियल पॉलिटिकल पावर है 18 सेंचुरी में वो नए किंगडम्स के पास आ गई थी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में। 18 सेंचुरी में हमें पता है कि जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो रहा था और न्यू किंगडम्स दे वर राइजिंग। At the same time, there were other people also who were trying to establish their hold in India. And especially अगर हम बात करें तो ये नए लोग थे Europeans, और उनके लिए इस time पे India आने के बाद दो बहुत ज़बरदस्त सी advantages थी। And पहला ये था कि मुगल Empire में जितने भी छोटे छोटे states थे अब वो rise हो रहे थे, सच एज मराठास, हैदराबाद, अवध, बंगाल, और इसलिए यूरोपियंस के लिए थोड़ा फाइट करना इजी था इन स्टेट्स के साथ, क्योंकि ये अलग हो चुकी थी मुगल एम्पायर से। अगर वो एक मुगल एम्पायर होता, यूनाइटेड होता, तो यूरोपियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता इनको हराने के लिए, जैसे अकबर के टाइम पे था या औरंगज़ेब के टाइम पे था। लेकिन अब बहुत सारा जो इनमें डिसयूनिटी आ गई थी, तो इसलिए यूरोपियंस के लिए बहुत आसान था कि वो इन्हें हरा सकते थे आसानी से। और दूसरा जो उनको फ़ायदा ये हुआ कि जब वो सी के थ्रू इंडिया में आए हैं, दैट दे वर ऑल गुड सी फाइटर्स। पहली चीज़ तो ये कि उनको सी में फाइट करना अच्छे से आता था और उनके पास प्रॉपर आर्टलरी थी कि जो वो शिप्स पे यूज़ कर सकते थे। और मुगल एम्परर्स ने कभी सी की पावर और इम्पोर्टेंस को इतना तवज्जो दिया ही नहीं। सो मुगल एम्पायर के पास कभी एक अच्छी नेवी थी ही नहीं। एंड जब यूरोपियंस ने टाउन्स को कैप्चर करना शुरू किया, स्पेशली अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया, नीदर द मुगल्स नॉर एनी अदर स्टेट कुड स्टॉप देम, क्योंकि उनको सी की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता थी और उनके पास नेवल चीज़ें भी नहीं थी, शिप्स भी नहीं थी, उन्होंने कभी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और इसके साथ साथ सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी किसके पास, यूरोपियंस के पास, लेकिन मुगल्स के पास वो नहीं थी। एंड कैसे यूरोपियंस ने इन टाउन्स को कैप्चर किया और ख़ुद इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए इंडिया में, ये थोड़ी अलग स्टोरी है जो हम मॉडर्न इंडिया की बुक में पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टोरी है वो यूरोपियंस की शुरू होती है, मुगल पीरियड में ही शुरू होती है। और जो यूरोपियन सबसे पहले इंडिया में सेटल हुए थे वो पोर्चुगीज थे, और हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी थी और वो गोवा में सेटल हुए थे। और काफ़ी सालों तक हम देखते हैं कि पोर्चुगीज़ जो हैं यूरोपियन पावर ही थे जो सिर्फ ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे, उनका और कोई मोटिव ही नहीं था। उन्होंने जब उनको नेवल सुप्रीमेसी तो उनके पास थी ही, इसलिए उन्होंने इंडियन और अदर एशियन मर्चेंट्स को ये कर दिया कि भैया तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर ट्रेड करना है, शिप चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। तो एक टाइम पे जो इंडिया का ट्रेड है वो काफ़ी हद तक बाहर के लोग जो हैं वो कैप्चर करके बैठे थे। 17 सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, और वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स नहीं थे बट बैंडेड टुगेदर एंड ट्रेडिंग कंपनीज बना बना के वो इंडिया आ रहे थे एंड उन्होंने अपना पूरा एक्सपेंस और प्रॉफिट सारा एक साथ बांटा. ग्रुप ऑफ पीपल वर कमिंग और ये जो फैक्ट्रीज ये जो हैं कंपनीज इनका इंडिया आने के बहुत सारे रीजंस थे. पहला तो ये था कि इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत थी बाहर के देशों में, स्पेशली हम स्पाइसेस की बात करें टेक्सटाइल गुड्स की बात करें तो ये सब बहुत डिमांड में थे उस टाइम पे. और अरब्स का पूरा कंट्रोल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे और इसलिए वो बहुत हाई प्राइस डिमांड करते थे यूरोपियन मर्चेंट से. इसलिए यूरोपियन मर्चेंट्स ने सोचा कि उनसे ट्रेड करने के बजाय हम डायरेक्टली इंडिया में ट्रेड करते हैं जाके. और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि जो मर्चेंट कम्युनिटी थी वो अब तक बहुत अमीर हो चुकी थी एंड देर वॉज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज एज वेल. और मर्चेंट्स जो है अब नई नई मार्केट्स खोज रहे थे एंड वो एरियाज ढूंढ रहे थे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स उनको ईजिली चीपली मिल जाए. और शिप्स जो थी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो भी आती थी वो अपने साथ कार्गोज लेके जाती थी, टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, ये सब लेके जाते थे. और अगर हम साउथ की बात करें तो मलाबार कोस्ट से पेपर, स्पाइसेस, ये सब एक्सपोर्ट होता था. और मद्रास के आसपास शुगर के सेंटर्स थे एंड बंगाल से जो है हमें सिल्क मिलती थी और सॉल्ट पीटर मिलता था. ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे ट्रेड होती थी. उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज धीरे धीरे शुरू हुई हैं इंडिया आने के लिए वो कौन कौन सी कंपनीज थी वो थोड़ा सा देख लेते हैं. जो डेनमार्क है उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई थी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी ट्रैन कैबार साउथ ऑफ मद्रास ऑन द ईस्ट कोस्ट में. और लेकिन ये जो डैनिश कंपनी थी वो इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं और उनके फेलियर का रीज़न ये भी था कि डच कंपनी को बहुत कंपटीशन आ रहा था हॉलैंड से एंड वॉज कॉल्ड द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स. इनके साथ इनका बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन था इसलिए ये इतना फ्लरिश नहीं हुए. और डच जो है एशिया आ गए कि वो एरियाज़ देखेंगे कि हमें रिच इन स्पाइसेस एरियाज़ खोजते हैं वहाँ जाके ट्रेड करेंगे. और ये एरियाज़ उनको मिले जावा में और सुमात्रा में और इसलिए उन्होंने वहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया स्पाइसेस का. उनका जो इंटरेस्ट था इंडिया में वो बस इतना सा था कि उनके शिप्स जो हैं वो यहाँ पे हॉल्ट कर सकें ताकि यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया जब वो जा रहे हैं तो हॉल्टिंग के लिए उनको एक जगह चाहिए थी तो इसलिए इन्होंने इंडिया को चुना. एंड और इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे वो सिर्फ स्पाइस के लिए सर्च करने के लिए आ रहे थे इंडिया में कि स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे. और डच जो थे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया में. और इंग्लिश जो हैं टर्न टू द इंडियन ट्रेड, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से फ़ायदा ले लेते हैं, पर्टिकुलरली हम टेक्सटाइल ट्रेड की बात करें. और धीरे धीरे जो है उन्होंने लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेड जो है वो इंडिया में शुरू हो जाता है. तो इंग्लिश हैड फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग कंपनी, उन्होंने भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी 1600 में एंड उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए इंडिया में. ये हमने जहांगीर के टाइम पे भी देखा था कि उन्होंने एक एम्बेसडर को भेजा था इसी रीज़न की वजह से और फाइनली वो सक्सीड हो गए एंड इंग्लिश ने बहुत सारी फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी जैसे कि मासुलीपट्टनम में, सूरत में फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम. और जो लास्ट की दो प्लेसेस हैं वो बहुत फेमस हुई थी लेटर ईयर्स में, स्पेशली सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम एज मद्रास एंड कैलकटा. दे ऑल्सो एक्वायर्ड बॉम्बे एज पार्ट ऑफ द डॉवरी जो कि पोर्चुगीज की प्रिंसेस अपने साथ लाई थी जब उसकी शादी होती है इंग्लिश किंग के साथ चार्ल्स सेकंड के साथ. और ये सारी जितनी भी प्लेसेस हैं वो उन्हीं जगह पे लोकेटेड थी जो ट्रेड और शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लोकेशन थी. जो इंग्लिश हैं देवर ग्रेजुअली सक्सीडेड इन आउटस्टैंडिंग ट्रेड इन इंडिया और उनका इतना ज़्यादा ट्रेड था कि उन्होंने एक टाइम पे डच और पोर्चुगीज़ को भी हरा दिया था. और पोर्चुगीज़ अब तक इस टाइम के आते आते बहुत अनपॉपुलर हो गए थे इंडिया में और इंग्लिश की जो सी पावर थी वो तो ज़बरदस्त थी ही और वो पोर्चुगीज़ से भी ज़्यादा तेज़ थे. और इसलिए जो है इंग्लिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कैप्चर कर पाए इंडिया का। इंग्लिश की दो कंपनीज थी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी, इसलिए इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबल हुआ। इन 1703 वी विल सी दैट दीज टू कंपनीज वर यूनाइटेड एंड उन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक अलग कंपनी बनाई, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बट जो इंग्लिश थी उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, और 1664 में फ्रेंच ने भी अपनी एक कंपनी बनाई थी और उन्होंने भी ट्रेड करने के लिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए कंपनी बनाई थी। एंड फ्रेंच हैड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन साउथ ऑफ मद्रास और जिसको कहा जाता है पौंडीचेरी, और ये बिल्कुल सेम जगह थी, एग्जैक्टली द सेम प्लेस विच इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी हैड बीन द एंशियंट रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ अरिका मेडू। यहाँ पे एंशियंट टाइम पे फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करें तो ये जो है प्लेस जहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट यहाँ इंडिया में हुई थी पौंडीचेरी में, वहीं पे एग्जैक्टली एंशियंट टाइम पे रोमन ये जो है ये जगह रोमन ट्रेडिंग सेंटर थी। और द फ्रेंच कंपनी प्रूव्ड टू बी स्ट्रॉन्ग राइवल टू द इंग्लिश, उनके लिए एक टाइम पे देवर वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉम्पिटिशन बिटवीन देम जो 18th सेंचुरी में था वो हमें दिखेगा कि बहुत क्लोज और इंटेंस कॉम्पिटिशन था दोनों कंपनीज के बीच में। और जो फ्रेंच और इंग्लिश हैं नॉट ओनली सक्सीडेड इन कैप्चरिंग इन ट्रेन, बट उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया था, न्यू किंगडम्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के कहीं ख़राब रिलेशन बना के। और ये पॉलिटिक्स में जब वो इन्वॉल्व हुए ये हुआ है 18th सेंचुरी में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि रीजंस क्या थे कि क्यों मुगल्स जो हैं उनका एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है इंडिया में। ठीक है, थैंक यू।